इशिका हॉस्पिटल में ऊपर वसुधा जी के पास जा रही थी, तभी उसे एक माँ बेटी की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ आयशा भी थी। उन दोनों ने अनजाने में उन माँ बेटे की बातें सुन ली थी। लड़के का नाम समीर था, जिसकी पत्नी बीमार थी, और लड़के की माँ उसे सलाह दे रही थी कि वो उसकी पत्नी कियारा को मरने दे। लड़के की माँ समीर की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रही थी। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर वो अपनी माँ के साथ प्लानिंग में शामिल हो गया था। इसी बीच कियारा बाहर आई और वो अपनी फैमिली से बात करना चाहती थी। समीर और उसकी माँ ने कियारा की बात नहीं करवाई तो उसने आयशा से मदद मांगी। आयशा ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे में इशिका आगे आई और उसने कियारा के भाई को कॉल करके बुलाया। कियारा का भाई कोई और नहीं, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन राघव मित्तल था, जिसकी पहचान से अब तक वो सभी लोग अनजान थे। अपने भाई के आने की बात सुनकर कियारा रो पड़ी। उसने इशिका की तरफ देखकर सुबकते हुए कहा, मेरा भाई। इशिका आगे आई और उसने कियारा का हाथ सहलाकर कहा, चिंता मत करो, वो अगले आधे घंटे में यहाँ आ रहा है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कियारा की आंखों में आंसू थे। एक अनजान लड़की उसकी मदद कर रही थी। उसने कड़वाहट से अपने पति समीर की तरफ देखा। कियारा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैंने एक गलत आदमी से शादी की, इससे प्यार किया था और उसने मुझे हमेशा खुश रखने का वादा किया था। अचानक कियारा के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। लगभग 2.5 साल पहले कियारा अपने दोस्तों के साथ गोवा में घूमने के लिए आई थी और वहाँ उसकी मुलाकात समीर से हुई। कुछ ही दिनों में दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कियारा की फैमिली हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी और उन्होंने कियारा को भी समझाया, पर कियारा ने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। इन 2 सालों में उसके घर वालों ने उसे काफ़ी बार फ़ोन किया और घर लौटने के लिए कहा, लेकिन कियारा उन्हें ये दिखाना चाहती थी कि वो कम पैसों में भी खुश है। कियारा को रोते हुए देखकर ऋषिका उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होगा, लेकिन खुद को शांत रखो। अपनी फैमिली से बहुत दिनों बाद मिलने वाली हो, उनके लिए खुद को खुश रखो। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि मैं उनके पास वापस लौट आऊँ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इन 2 सालों में ना जाने उन्होंने कितनी बार मुझे कॉल करके अपने पास आने को कहा, पर मैं ही बेवकूफ़ थी जो प्यार के जाल में फंस गई थी, कियारा ने जवाब दिया। अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरी बार जब उसकी अपनी फैमिली से बात हुई थी, तब उसके भाई ने उसे यही समझाया था कि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन और पैसों के बारे में कभी अपने पति को ना बताएं। वो देखना चाहते थे कि क्या सच में समीर कियारा से प्यार करता है या नहीं। उनकी बात मानते हुए कियारा ने कभी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन्हें नहीं बताया। अपनी सास को खुश करने के लिए उसने घर के हर छोटे काम करना सीख लिया। जब वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती थी कि उसे खाना बनाना और सफाई करना आ गया है, तो वो उसे यही समझाती थी कि वो नाजों से पली हुई है, उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने दिनों तक कियारा की आंखों पर उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में चंद पैसों के लिए उन सब की सच्चाई कियारा के सामने आ गई थी। कियारा ने इशिका की तरफ प्यार से देखा। इशिका ही इकलौती वो शख्स थी जिसने इतनी मुश्किल परिस्थिति में उसकी मदद की थी। वो इशिका का चेहरा भूलना नहीं चाहती थी। कियारा इशिका की तरफ देख रही थी, तभी उसके कानों में समीर की आवाज गूंजी। वो गुस्से से बोला, देखो मिस, तुम जो भी हो, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि इसका भाई यहाँ आने के बाद तुम्हें इनाम देगा, तो तुम गलतफहमी में मत रहो। इसके घर वालों के पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, वो बस यहाँ आकर अफसोस जताएंगे और चले जाएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके इलाज में कितने पैसे लग रहे हैं, उल्टा वो तुम्हें 2 बातें सुनाएगा क्योंकि तुमने बीच में टांग अड़ाकर उन्हें यहाँ बुलाया। समीर की बातें सुनकर कियारा को गुस्सा आने लगा। उसने फिर भी खुद को शांत रखा और समीर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे भाई के पास पैसा है और वो मुझे यहाँ से ले जाकर मेरा इलाज करवा देगा। अगर तुमने सच में कभी मुझसे प्यार किया है तो मुझे रोकना मत, बदले में चाहो तो मेरा घर रख सकते हो। कियारा समीर को अच्छे से जानती थी, वो उसे जाने नहीं देने वाला था, तभी उसने उससे रिक्वेस्ट की, रियली तुम्हारा घर? समीर हैरानी से चिढ़कर बोला, वो घर हमने शादी के बाद खरीदा था तो उस पर हम दोनों का हक है। उस टाइम तुम्हारी फैमिली कहाँ गई थी जब तुम मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो रही थी और मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी? अरे आशीर्वाद तक देने के लिए नहीं आए थे वो लोग? अब तक तो उन्होंने तुम्हारी खोज खबर ली नहीं और अब आ जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे वो? कियारा ने इस बात को अब तक छुपा कर रखा था कि वो उन सबसे छुप कर अपनी फैमिली से बात करती है। समीर की बातें सुनकर कियारा को अफसोस हो रहा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने कभी कियारा से प्यार किया ही नहीं। गुस्से से कियारा का सिर चकराने लगा था और वो बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर ऋषिका घबरा गई। वो तुरंत बोली, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। बोलते हुए वो जल्दी से नीचे बैठी और कियारा की नब्स चेक करने लगी। उसकी नब्स काफी धीमी चल रही थी। इशिका ने जल्दी से कहा, इसे अभी सीपीआर देने की जरूरत है, वरना ये मर जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समीर ने बेपरवाही से कहा। कियारा की आखिरी इच्छा यही थी कि वो और ज्यादा बीमार होकर ना मरे। अगर अब उसकी नेचुरल डेथ हो रही है तो तुम क्यों उसे तकलीफ देना चाहती हो? तुम हमारे फैमिली मैटर्स में कुछ ज्यादा ही बीच में बोल रही हो। मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, साइड हट जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर ऋषिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। समीर का साथ देते हुए उसकी माँ आगे आई और बोली, मेरा बेटा सही कह रहा है, मेरी बहू अपने घर पर मरना चाहती थी, और देखो ये लड़की उसे हमारे घर नहीं ले जाने दे रही है। इसकी आखिरी इच्छा भी तो पूरी करने दो। समीर की माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। इससे आसपास के लोग और अस्पताल का स्टाफ वहां इकट्ठा होने लगा। लोगों को इकट्ठा होते देखकर समीर की माँ कियारा के पास झुकी और रोने का दिखावा करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहू, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। इस लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। इसने हमारे घर के मामलों में दखल दिया था और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करके घर नहीं ले जा पाई। अफसोस है कि तुम्हें हॉस्पिटल में मरना पड़ रहा है। इशिका को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं था। हर एक सेकंड कियारा की जिंदगी के लिए जरूरी था। इशिका ने बिना कुछ कहे कियारा को वहीं फर्श पर लिटाया। समीर ने इशिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन इशिका ने उसे दूर धकेल दिया था। तभी हेड नर्स वहां पर आई और वहां हो रहा हंगामा देखकर उसने सख्ती से पूछा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? देखिए ना, ये लड़की बीच में आ गई। मेरा बेटा और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का इलाज यहाँ पर हो। हम डिस्चार्ज चाहते हैं, लेकिन ये इसे छोड़ ही नहीं रही है, कियारा की सास तमाशा करते हुए बोली। वहीं इशिका ने जिस तरह से समीर को धक्का दिया था, वो गुस्से से तिलमिना उठा था। उसने नर्स से कहा, आखिर आपके हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? ये इसे सीपीआर देकर फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि मेरी पत्नी दर्द भरी मौत कभी नहीं चाहती थी। उसे एक सुकून भरी मौत मिल रही है, तो इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे अभी इसी वक्त कियारा को घर लेकर जाना है। उसकी इच्छा थी कि वो घर पर अपनी अंतिम सांसें ले।
उन सब की बातें सुनने के बाद नर्स जल्दी से इशिका के पास गई और गुस्से में बोली, मिस, आप यहाँ पर आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कियारा को सीपीआर देते हुए इशिका ने कहा, ये औरत मरना नहीं चाहती थी। इसने अपने भाई को कॉल किया था, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, वैसे भी इस तरह खुद की जान लेने का हक किसी को नहीं है, और ना ही ये डिसाइड करने का कि उसे कब मरना है। इसका भाई भी इसकी फैमिली है और उसे फैसले लेने का हक है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, नर्स ने जवाब दिया, जिसे सुनकर समीर और उसकी माँ चौंक गए थे। आयशा अब तक तमाशा देख रही थी, फिर वो समीर का साथ देते हुए बोली, इशिका तुम क्यों जिद कर रही हो? ये लड़की मरना चाहती थी। अगर बच भी गई तो इसकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी। इसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। कौन सा इसका भाई आ जाएगा तो पैसे दे देगा? ना ही इसकी फैमिली के पास पैसा है। बेचारे को तड़प तड़प के मरना होगा। इससे अच्छा अब इसकी जान जा रही है तो तुम इसे बचाने पर तुली हो। आयशा उनका साथ दे रही थी तो समीर की खुश हो गया। वो रोने का दिखावा करते हुए बोला, ये लड़की सच कह रही है, हमारे पास इसके इलाज के पैसे नहीं है। इसका भाई भी गरीब है, पहले ही हमें इसके बीमार होने पर इतना गिल्ट हो रहा है। हमें और तकलीफ में मत डालो। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ जो अपनी आंखों के सामने अपनी बीमार पत्नी को मरते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इसे बीमारी से तड़प के भी तो नहीं देख सकता। समीर का ड्रामा काम कर गया। आसपास के लोगों को समीर से सहानुभूति होने लगी। सब बातें बनाने लगे। उनके हिसाब से इशिका की उम्र काफी कम थी और उसे दूसरों के फैमिली मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए था। समीर की माँ जोर से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए, उस लड़की को वहाँ से हटाते हैं। मुझे मेरी बहू की लाश घर ले जाने दो, मेरी मदद करो। सिक्योरिटी गार्ड आगे आने लगा। इशिका उन सब की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर बोली, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पैसों के चक्कर में अपनी बहू को मारना चाहते हो? ये मरी नहीं है, अभी इसकी सांसें बाकी हैं। सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर रुक गया, लेकिन समीर की माँ नहीं रुकी। वो इशिका के पास गई और उसे रोकने के लिए उसके बालों को खींचने लगी। हालांकि इशिका को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। वो अब रुक जाती तो शायद कभी भी कियारा को बचा नहीं पाती। इशिका की हालत देखकर आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। कैसी बेवकूफ लड़की है ये, क्या फायदा इतनी अच्छाई का जब लोग इसके साथ में इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। यही वजह है कि मालविका आंटी इसे पसंद नहीं करती है, आयशा ने मन ही मन कहा। वो हाथ बांधे सारा तमाशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में काफी सारी लग्जरी कारें एक साथ आकर रुकी। उसमें से राघव मित्तल बाहर निकला और वो तेज कदमों से चलते हुए ऊपर बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्डों की अच्छी खासी फौज आ रही थी। उनके आते ही माहौल वहीं पर थमसा गया था। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि कियारा जमीन पर थी और कोई उसे सीपीआर दे रहा था। कियारा काफी कमजोर लग रही थी और ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। राघव मित्तल ने अपनी बहन को इस हाल में देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। कहां वो इतने नाजों से पली हुई थी और अब उसकी हालत किसी नौकरानी की तरह हो गई थी। राघव कियारा को एकटक देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये एक एडवांस हॉस्पिटल है, फिर भी कियारा का इलाज इस तरह जमीन पर पुराने तरीके से CPR देकर क्यों किया जा रहा है? ऐसे मोमेंट पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट को सेफली बचाया जा सके, लेकिन कियारा के आसपास कोई मशीन क्यों नहीं है? तभी अचानक राघव की नज़र समीर की माँ पर गई, जो उस व्यक्ति पर हमला कर रही थी जो कियारा को बचाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से राघव तेज सांस ले रहा था और उसका मन कर रहा था कि अभी वो सब कुछ तबाह कर दे। कियारा की सास इशिका पर चिल्लाते हुए बोली, मैं कहती हूँ दूर हो जाओ लड़की, मेरी बहू का इलाज हम नहीं करवा सकते हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। जब वो मर रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उसे बचाने की? तुम्हें इतनी बार कह दिया कि हमारे घर के मामले में दखल मत दो, तुम हमें बर्बाद करने पर तुली हुई हो, जो ये लड़की पहले ही कर चुकी है। अपनी माँ का साथ देते हुए समीर बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? इसकी सर्जरी के 50 लाख रुपए लगेंगे, ऊपर से हर महीने 1 लाख इसकी मेंटेनेंस के लगने वाले हैं। ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही इसकी फैमिली के पास। अगर ये बच भी गई तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। उसने खुद ही हार मान ली है तो फिर तुम क्यों इसकी जान बचा रही हो? उन सब की बातें सुनकर राघव का चेहरा सर्द हो गया था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक ले और समीर और उसकी माँ को मार डाले। 50 लाख? राघव धीरे से बोला, ये 50 लाख रुपए के लिए मेरी बहन को मार देना चाहते हैं? मेरी बहन की जान के आगे इतने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। शादी से पहले उसने जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखा वो मैंने उसे ला कर दी, चाहे वो करोड़ों की भी क्यों ना हो, और आज ये इतने कम पैसों के लिए मेरी बहन को मारना चाहते हैं? राघव अब और खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकता था। वो कियारा की तरफ बढ़ने लगा, देखते हैं राघव क्या करता है और उसकी सच्चाई सामने आने पर आयशा का क्या हाल होता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।